کلاس ہے 19 نومبر 1967. کہا چلا ہے یہ وقت جا رہا ہے, روحانی بچوں نے گیت کا ارتھ سمجھا, دیوان کی اسٹیج میں رہنے والوں نے نہیں سمجھا, کیونکہ جو روحانی باپ کے روحانی بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سنگم یوگ کا بہت سمے پورا ہوا اور جو پرشارتھ کا تھوڑا سا شانتی کا ٹائم بچا ہوا ہے وہ ٹائم بھی اب جانے والا ہے. جسمانی بچے تو ان باتوں کو سمجھتے نہیں, وہ اپنے جسمانی دھندے میں ہی لگے ہوئے ہیں, روحانی بچے ہی سمجھ سکتے ہیں. باپ کہتے ہیں ایک منٹ ایک سیکنڈ پاس ہوتا ہے تو آیو کم ہوتی جاتی ہے, اس سمے کی تمہاری آیو بہت ویلیوبل ہے. کون سے سمے کی؟ جو پرشوتم سنگم یوگ کی جو روحانی آیو ہے بہت ویلیوبل ہے, ایک سیکنڈ بھی تمہارا فالتو نہیں جانا چاہیے. پرنتو سیکنڈ بائی سیکنڈ کو یاد نہیں کرتے ہیں. باپ نے یہ بھی کہا ہے گرست ویوہار میں بھی رہنا ہے, گرست ویوہار میں رہنا مانا کوئی یہ نہیں کہ وکار میں جانا ہے. دیوتائیں بھی تو گرہستی تھے نا, پرنتو وکار ہی تو نہیں تھے. تو گرہستھ مانا بال بچوں کے پریوار میں رہنا, یہاں اتنے سب کیسے آئے بیٹھیں گے؟ تم بچے جانتے ہو اس سمے ہم ایشوریہ پریوار میں, اور بابا بھی ہمارے ساتھ ہے. جب دور رہتے ہیں پھر ایسے تو نہیں کہیں گے بابا ہمارے ساتھ ہے. وہ تو پھر بدھی یوگ سے کھینچنے کی بات ہو جاتی ہے, سمجھیں گے بابا آبو میں بیٹھا ہے. یہاں تو باپ سنمکھ کہتے ہیں بچے سیکنڈ بائی سیکنڈ تمہاری آیو کم ہوتی جاتی ہے, باقی تھوڑا ٹائم ہے, اس ٹائم کو سفل کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے باپ کی یاد میں رہنا ہے. بل باپ کہتے ہیں ایسی استھائی اوستھا پچھاڑی میں ہوگی, ابھی ایسی ایک رس اوستھا اور کسی کی ہو نہیں سکتی. بل کوئی بھی کتنا پرشارتھ کرے پرنتو نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی کارن ہوگا, کیا کارن ہوگا؟ 63 جنموں کے حساب کتاب جب تک پورے نہیں ہوتے ہیں اوستھا اوپر نیچے ہوتی رہے گی. یہاں تم جانتے ہو کہ باپ ٹیچر گرو ہم کو پڑھاتے ہیں, پرنتو وہ کیسے پڑھاتے ہیں بالکل سمجھتے نہیں. روپے سے ایک پائی سمجھتے ہیں, تو جتنا سمجھتے ہیں اتنا پائی پیسے کا پد آئے گا. اس سمے کی بات کہی ہے, संगम युग में भी किस समय की बात कही कि पाई पैसे का समझते हैं। बेसिक नॉलेज की बात बताई, जो समय बाप बाप के रूप में, टीचर के रूप में और गुरु के रूप में कैसे पढ़ाई पढ़ाता है, ये कोई रुपए में पाई भर ही समझते हैं। तो जितना समझते हैं उतना ही पद पावेंगे, क्योंकि उस समय एडवांस एनालिसिस तो निकली ही नहीं थी। परंतु देखते हैं उनको पद आदि की कोई परवाह भी नहीं है। पिछाड़ी में जानेंगे, बाप कौन है। अभी तो बाप साधारण तन में है ना, इस समय की पिछाड़ी की बात कही। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय की बात कही क्या, उस समय जानेंगे, उस समय की भी बात नहीं है। बाप से बच्चे जब तक पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है और बच्चों का पद भी गुप्त है। बाप इसलिए गुप्त है कि बाप साधारण तन में आया हुआ है, तो बाप को पिछाड़ी में जानेंगे। बाप समझाते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। बाप के सिवाय और कोई कह नहीं सकता कि देह के सर्व संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, दूसरा कोई क्यों नहीं कह सकता। कोई धर्म पिता, कोई महात्मा, कोई धर्म आत्मा ये क्यों नहीं कह सकते कि देह के सर्व संबंध छोड़ करके मुझे अपने बाप को याद करो। क्योंकि सब देह के बंधन में बंधे हुए, एक ही आत्मा है जो देह के बंधन में कभी नहीं बंधती है। तो बाप ही बच्चों को कहते हैं और वो रूहानी बाप है, बाकी दुनिया की मनुष्य इन बातों को क्या जाने। इसलिए बाबा बाहर जाने की भी छुट्टी नहीं देते हैं, क्योंकि हैं जैसे बंदर और बंदरियां, कुछ भी समझते नहीं। शंकराचार्य जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु बाप ने कहा है ये तो हिरण्यकश्यप है, ये आसुरी संप्रदाय है, तो उनके फॉलोअर्स भी ऐसे थे। बाप कहते हैं उनको कुछ भी पता नहीं है ये कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जिनको पता नहीं है कि हम क्या बन रहे हैं, नंबर वार है ना, कितनी डिस सर्विस भी कर लेते हैं। क्रोध का भूत बड़ा भारी भूत है और ये भूत भी बहुत बच्चों में है। अगर 100% क्रोध का भूत देखना हो तो दुनिया वालों में नहीं देखने को मिलेगा, बेसिक नॉलेज वालों में भी नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ जो मेरे सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, उनमें वो क्रोध का भूत 100% भी देखने को मिलेगा। इनमें सब अवगुण हैं, जैसे कि कुछ भी सुधरते नहीं है। आपस में ही बात ऐसे करते हैं जैसे कि जहर फेंकते हैं। पिचारी में सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या पद पावेंगे? सजाएं भी कोई कम थोड़ी होती है, इतनी इतनी सजाएं खावेंगे कि पाई पैसे का भी पद नहीं पा सकते। परंतु ऐसों को पद की भी परवाह नहीं है, जैसे कि जीते हुए मुर्दे। चलन ऐसी है कि बात मत पूछो। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे 5-7 होते हैं तो कहते हैं कि हमारे सच्चे सच्चे बच्चे तो सिर्फ 2 हैं, जो बड़े आज्ञाकारी हैं। ये बाप तो कहते हैं हमारे पास सैकड़ों हजारों हैं जो फरमान बरदार अच्छे बच्चे हैं, वो अपनी सर्विस में मस्त रहते। क्या पहचान बताई अच्छे फरमान बरदार बच्चों की? वो अपनी सर्विस में मस्त रहेंगे। बाकी जो अच्छे नहीं है, फरमान बरदार नहीं है, वो क्या करेंगे? इस सर्विस में मस्त रहते हैं। बार सेंटर्स में भी ऐसे बहुत हैं जो डिससर्विस ही करते रहते हैं। तंग करने वाले बहुत होते हैं ना, भाभी ड्रामा की कुछ ऐसी है। नहीं तो बहुत मीठा, शांत, कम बोलना और रायल बोलना होना चाहिए। राजाएं कितना रायल होते। राजसी किस्म की आत्माएं सारा दिन तिक तिक नहीं करती हैं, बहुत थोड़ा बोलती है। जैसे पागल लोग घूमने जाते हैं, कितना साइलेंस में घूमते हैं। क्राइस्ट या क्राइस्ट के बाप की याद में घूमने जाते हैं। यहां भी घूमने जाते हैं तो सो ऐसे देखने में आते हैं जो सिवाय पराई पचन के कुछ नहीं जानते। हड्डी सर से उतरने वाले बच्चे देखने से तो दिल ही खुश हो जाती है। बाप को तो खुशबूदार फूल चाहिए, कांटों को तो नहीं देखेंगे। बाप को तो फिर भी समझाना पड़ता है ये कुछ तो सुधरे हैं। क्लास में आने की भी फजीलत चाहिए, बुद्धि में आना चाहिए कि बाप कहां से आए हैं पढ़ने। पहले तो तरस आना चाहिए, बाबा को हम कहां से बुलाते हैं? तो रहते ही हो पतित दुनिया में, बुलाते हो हे पतित पावन दूर देश के रहने वाले, आओ इस पतित दुनिया पुराने तन में आओ, हमको आकर के फूल बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर है क्या? विश्व का मालिक बनना है, कुछ भी समझते नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। जैसे कि पुरुषार्थ न करने की उन्होंने कसम उठाई हुई है 1967 की वाणी का दूसरा दिन, बाबा तो रात दिन कितना समझाते रहते। बच्चों समय अभी बहुत थोड़ा है, तुम्हारी उम्र घटती जाती है, उम्र घटती जाती है कि बढ़ती जाती है, है? बढ़ती जा रही, घटती कहाँ जा रही। अरे पुरुषार्थ करने की उम्र घट रही है कि बढ़ रही है। पुरुषार्थ करने के लिए टाइम जास्ती होता जा रहा है या घटता जा रहा है? पुरुषार्थ के लिए टाइम कम होता जा रहा है। 8-9 वर्ष तो बाबा कहते हैं, परंतु तैयारी तो जैसे कि हुई ही पड़ी है। कॉन्सेशन की बात है, आठ नौ वर्ष कॉन्सेशन की बात बताई, 67 की वाणी है, उसमें 9 वर्ष ऐड कर दिए तो 76 आता है। तो 76 में बाबा को जो तैयारी करनी थी वो तैयारी का काम पूरा होता है। वो तैयारी जैसे हुई ही पड़ी है, गुस्से को अंदर में दबाते रहते हैं। तुम जानते हो कि हमारे ही खातिर ये मिल साहिल सारे सब तैयार हुए हैं। आगे चल करके मनुष्य भी समझते जाएंगे, बच्चों को डायरेक्शन मिलता है फिर अमल में तो लाते नहीं है, तो समझा जाता है कि शायद अभी देरी। बाबा ने कहा है कि गीता का भगवान कौन, ये अखबार में डालो। एरोप्लेन से पर्चे दिखाओ, अखबार एरोप्लेन से भी गिरो। गीता का भगवान शिव है ये भूलने से ही दुनिया की दुर्गति हुई। गीता का भगवान किसे बनाए दिया? साकार कृष्ण को बनाए दिया। जो साकारी स्टेज वाला है वो गीता ज्ञान दाता सर्व का सदगति दाता कैसे हो सकता है? ये भक्ति मार्ग की दुर्गति है, भक्ति मार्ग है ही दुर्गति मार्ग। वो लोग तो समझते हैं कि भक्ति के बाद भगवान मिलता है, ये बात तो ठीक है। भक्ति जब पूरी होगी तो भगवान आकर के फल देंगे भक्ति का। भगवान को ही तो भक्ति का फल देना है, श्री श्री 108 जगत गुरुओं को तो नहीं देना है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। फिर ये जो टाइटल धराने वाले हैं श्री श्री 108, ये कहां से आए? ढेर के ढेर गुरु है, आगा खां को गुरु भी कहते हैं, मुसलमानों का गुरु है ना, तो क्या वो आगा खां सदगति करते हैं? कितनी अंधश्रद्धा है और कितना उनका मान है। आगा खां को प्रिंस भी कहते हैं। अब प्रिंस तो राजा का बच्चा होता है, ये तो सिर्फ साहूकार है इसलिए उनको प्रिंस कहते हैं। कृष्ण को भी प्रिंस नहीं महाराजा कहना चाहिए। प्रिंस अक्षर तो अंग्रेजी का है, तुम्हारी अक्षर अक्षर राइट निकलने चाहिए। अभी प्रिंस तो कोई भी नहीं है, राजा भी नहीं है। अगर कोई की राजाई है भी तो वो टाइटल खरीद किया हुआ है। सत्युग में तो कहते हैं महाराजा महारानी, राम सीता को राजा राम कहेंगे। यहां तो समझते कुछ भी नहीं, जो आता है सो बोलते रहते हैं। ये संस्कृत भाषा तो वास्तव में भाषा ही नहीं है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा है जहां संस्कृत भाषा बोली जाती हो? भाषा होगी तो भाषा में बोलने वाले भी होंगे। तो बाप संस्कृत में आकर के थोड़े ही सुनाते हैं। अगर बाप आकर के संस्कृत में सुनाने लगे फिर तो सबको संस्कृत सीखने के लिए बनारस कॉलेज में बिठाना पड़ेगा। अब आवलाएं कैसे संस्कृत सीखेंगे? और हिंदी भाषा तो कितनी सीधी साधी है। बाप कहते हैं हम तो हिंदी में ही समझाता हूं। क्या कौन कहते हैं?
बाप।
क्यों? ब्रह्मा बाबा की भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा थी या सिंधी भाषा थी? संस्कृत भाषा तो यह रथ ही नहीं जानता है। तो शिवा फिर कैसे बोलेंगे? जो जिस भाषा को जानता होगा उस भाषा में बोलेगा ना। जो रथ की भाषा होगी उसी में समझा देंगे। तो ये सब तुम बच्चों को समझाने की बातें हैं। जो ये जानते हैं वो ही बाप बताते हैं, वो ही भाषा चलती है। सिंधी भाषा हो तो और लोग तो आएंगे ही नहीं। सिंधी फिर भी मेजॉरिटी में है, हिंदी तो मेजॉरिटी में है ही। ऐसे भी नहीं है कि सतयुग में हिंदी हिंदी होगी। वहां तो तुम्हारी अपनी ही भाषा होगी, हिंदी नहीं होगी। हिंदी में बाप आकर के बोलते हैं तो सतयुग में हिंदी भाषा होनी चाहिए। हिंदी भाषा सतयुग में क्यों नहीं होती? क्योंकि बाप बताते हैं देवताओं की इशारे की भाषा होती है, उनको जास्ती बोलने की दरकार है ही नहीं। बाप आया समझाया तो हिंदी भाषा का पार्ट पूरा हुआ। तो जो वहां की भाषा होगी वो ही चलेगी। फिर राम राज्य में भाषा बदली हो जाती। ऐसा हो सकता है, शायद एक ही भाषा चलती हो। समय पर जो होगा सो देखा जाएगा। बाबा पहले से ही नहीं बता देंगे, तुम चलते चलो। ये तो जानते हो कि टोटल विनाश होना है। गाया हुआ भी है कि राम गया राम आ गया। कोई कोई अक्षर ऐसे निकल आते हैं। देवी देवता धर्म भी प्राय लोप है, बाकी चित्र हैं। अभी तुम बच्चों को समझ में आता है कि इतना समय कम है। उस कम समय में ही हम डबल सिरताजी बनने वाले हैं, फिर इतना समय सिंगल ताज होगा। फिर नौ तार। अभी तो जो भी थोड़ा समय है, जो भी टाइम मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। राजाएं नाम मात्र टाइटल खरीद कर अपने को राजा कहलावे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कहेंगे हम नहीं देंगे। क्या मतलब हुआ? जो मिसाल देते हैं, टाइटल राजा ही के खरीद करते थे, महाराजा बनते थे, टाइटल मिलता था और उनको पैसे देने पड़ते थे। गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे तो महाराजा का टाइटल दे देते थे। उसका संगम युग से क्या कनेक्शन है? क्योंकि जो असली महाराजा ही वो तो गई, असली महाराजा वो तो विश्व का एक ही महाराजा होता है। बाकी अगर उसको जो भी कमाई हुई राजाई की प्रॉपर्टी है वो अगर देवे, अर्पण कर देवे, तो महाराजाई का टाइटल मिल सकता है। सत्युगों में महाराजा है तो बनेंगे, परंतु वो टाइटल मात्र होंगे या वास्तव में महाराजा होंगे? टाइटल मात्र होंगे, वो भी ऐसे नहीं सदैव महाराजा का टाइटल मिलता रहेगा। आगे चल करके वो महाराजा का टाइटल भी खत्म कर देते। कहां से खत्म होता है? सत्युग का आठवां नारायण महाराजा का आखिरी टाइटलधारी होता है, उसके बाद महाराजा का टाइटल भी खलास हो जाता है। फिर कोई कर ही क्या सकेंगे? कायदों को तो फिराते ही रहते। तुम देखेंगे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। तुम बच्चों को तो एक्यूरेट पता है, ये दुनिया तो कुछ भी अभी देखने में जो आती है वो तो समझो कि गई तुम्हारी आयु दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, याद से ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तंदुरुस्ती भी बनेगी। तुम जानते हो कि हमें देवी देवताएं बहुत ही तंदुरुस्त थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बाप कितनी बातें सहज समझाते हैं कि बच्चे अपन को आत्मा समझ कर याद में रहो, याद से ही तुम पति से पावन बनेंगे। वो सन्यासी तो कह देते हैं गंगा पतित पावनी, फिर बोलते हैं पतित पावन सीताराम। कोई भी एक बात पर ठहरते नहीं। उन्होंने शास्त्र आदि बहुत पढ़े हुए हैं, परंतु उनकी बुद्धि में भी अर्थ तो कुछ भी नहीं बैठता। सिर्फ कहते हैं आकर के हमसे शास्त्र बात करो। तुम तो कहते हो कि शास्त्र तो सभी भक्ति मार्ग के हैं, हमको तो भगवान आकर के पढ़ाते हैं। 1967 की वाणी का तीसरा पुण्य। हम कोई शास्त्रों को नहीं मानते, हम शास्त्रों का नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि शास्त्र है मनुष्यों की बनाई हुई, मनुष्य सार विकारी है और निर्विकारी तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो शास्त्रवाद हम कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों को तो हम जानते हैं कि वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्ति आती है अनेक सिरों से, अर्थात रावण से, और ज्ञान आता है राम से। रामलीला खेलते हैं तो राम को एक सर दिखाते हैं और रावण को अनेक सर दिखाते हैं, हम जानते हैं, परंतु समझते भी हैं कि वो सारी भक्तिमान की सामग्री ज्ञान का सागर तो एक ही बात है, वो ही आकर के ज्ञान देते हैं। ये है ही रूहानी नॉलेज। अगर नॉलेज ही नहीं मिलती तो तुम यहां पर क्यों आते? बहुत समझने की बातें हैं। आगे चल करके तो ये शंकराचार्य आदि सभी तुम बच्चों के आगे झुकेंगे। अभी तो गुरुर गुरुर करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा के आगे ही झुकेंगे, नहीं, तुम बच्चों के आगे भी झुकेंगे। शिव बाबा तो बहुत गुप्त है, तो उनको मैसेज तुमको ही देना है। कहते भी हैं ओ प्रभु तेरी लीला, परंतु प्रभु जी क्या लीला करते हैं वो जानते ही नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के। प्रभु की गतिमति कैसे न्यारी है सो तो तुम ही जानते हो। भगवान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई को ही पूरी रीति लग जानी चाहिए, या कि दूसरे तरीके आदि में लगना चाहिए? समझते हो ना कि वो दुनियावी नॉलेज अच्छी है या यह नॉलेज अच्छी है जो 84 जन्मों की कमाई कराती है, और इस कमाई से तुम इस जन्म में विश्व के राजा बनते हो, महाराज महाराज कुमारी बनते हो। कहेंगे ये नॉलेज अच्छी है, फिर भी पढ़ते नहीं, नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कोई कोई समझे भी है कि ये नॉलेज हमको कितना ऊंचा बनाती है, उस पाई पैसे की नॉलेज में तो अंधा ही बनाया जाता है। अभी तुम सबको रास्ता बताते हो, मनुष्य तो रिंचक भी इस रास्ते को नहीं जानते। तुम्हारे में ये बहुत है जो कि ड्रामा को नहीं जानते हैं, ऐसी वंडरफुल बात है। जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, देह अभिमान में जो फंसे रहते हैं, तो वो इसे जाने इस नॉलेज को क्या जाने? देह में फंसने वाला इस नॉलेज को धारण ही नहीं कर सकता। जिनके पास धन बहुत है कहते हैं कि वो तो स्वर्ग में ही है, तो क्या जाने नरक की क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है? भगवान बाप पढ़ाते हैं तो उनकी तो कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, ये भी याद रहे तो भी कितनी उन्नति हो जाए। कुछ तो एक मिनट भी याद नहीं करते हैं तो बाबा कहते रहते हैं कि समय चलता चला जा रहा है, अभी अपनी उन्नति करते रहो। कोई कोई बातचीत तो ऐसी करते हैं जैसे कि फूंक देते रहे। अब शिव बाबा को तो फूंक नहीं लगती, फूंक लगती ही है जिसमें कि शिव बाबा प्रवेश करते हैं, बाप ही आकर के इनमें पढ़ाते हैं। कितना बड़ा आसामी इनका यादगार सोमनाथ का मंदिर है, देखो कितने हीरे जवाहरातों से बनाया हुआ था, कितने जवाहरात थे, सोना चांदी तो उस समय बिल्कुल ही डैम चेक था, सोने चांदी के मकान बनते थे, मंदिर में ही कितने जवाहर ले गए, जो मुसलमान लूट ले गए, मकानों में भी उस समय हीरे मोती जड़े हुए थे। तो दिल में ख्याल आता है क्या करें, अभी तो ये फिर होगा, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए, फिर देखना हमारे पास कितना धन होगा। हीरे मोतियों से हमारे बच्चे खेलते रहेंगे, मंदिरों में भी हीरे जवाहरात लगाए हुए, तो जरूर राजाओं के महलों में भी होंगे। ऐसे विश्व का तो तुम मालिक बन रहे हो, तो उसको कितनी स्थायी खुशी रहनी चाहिए। सुनने और देखने से ही दिल ठार हो जाती है। हम ऐसे मालिक थे, अभी फिर से बन रहे हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, अभी उतनी कापारी खुशी क्यों नहीं चढ़ती है? क्योंकि अभी माया सामना करती है। हमको देह अहंकार भी बहुत आ जाता है, माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर से लड़ती है। पहलवान ही तो पहलवान से लड़ेगा ना, इसलिए अभी बहुत खबरदार होकर के रहना है, गंभीर होकर के रहना है, क्योंकि माया तो तैयार ही बैठी रहती है, देखेगी कौन अच्छा योग में है, पक्का होकर के बैठा है, उसी पर झट वार करेगी। तुम खुद भी कहते हो कि हमारी याद पारे में सर खिसकती रहती है, पद भी तो बहुत ऊंचा है ना, ये पद कौन पा सकेंगे, वो झट पड़ा पड़ जाते हैं। अभी तुम समझते हो माया कितनी प्रबल है, कोई को भी ऐसे हराए लेती है जो कि एकदम पट्ट में पड़ जाते हैं। इसमें कंपेनियन आदि की भी कोई बात नहीं, हमको तो देह सहित ही सभी कुछ भूलना है, कोई भी कुछ भी याद न रहे सिवाय एक बात की, अगर कोई को कंपेनियन बनाया तो फिर उसकी ही याद बुद्धि में बैठ जाएगी, उसको भूल नहीं सकेंगे। बाप बिल्कुल भूल जाएगा। यहां पर तो बाप कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, पिछाड़ी में तो सारी कोई की भी याद न रहे, तब प्राण तल से निकले। इतनी ऊंची मंजिल है, अगर जरा भी कोई की याद आ गई तो रामचंद्र की तरह फेल हो जाएगा। बाप युक्तियां बहुत बतलाते हैं, परंतु बच्चे अमल में नहीं लाते हैं। अमल में ना लाने के कारण फिर बाप भी क्या कर सकते हैं। अच्छा बच्चों को क्लास है 16 नवंबर 1967 बाप पहले पहले बच्चों से पूछते हैं, आत्माभिमानी होकर के बैठे हो, ऐसी क्यों पूछते हैं पहले पहले कि आत्माभिमानी होकर बैठे हो? क्योंकि जो बच्चे आत्माभिमानी होकर के बैठते हैं वही बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं और असलियत में बाप को याद करते हैं। बेअभिमान में रहने से न बाप याद आवेगा न बाप की पढ़ाई याद आवेगी। तो बाप सावधान करते हैं, कोई आत्मिक स्थिति में रहते हैं कोई नहीं रहते हैं, परंतु पूछने से भी सत्य नहीं बतावेंगे। जैसे कि सत्य जानते ही नहीं है, कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। रात दिन ये बात सुनते हैं फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। बादशाही में तो आवेंगे परंतु पद बहुत नीचे पावेंगे। प्रजापद में आ जाएंगे, प्रजा भी फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। तो जानते हैं हमारा कोई पद नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं बाहर में रह करके सीखेंगे तो अच्छा पद पावेंगे। अंदर में रहेंगे और अवज्ञा करते रहेंगे तो बहुत नीचे पद हो जाएगा। बाप को बहुत भूल जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं उस रूप को कोई बिरला ही जानते हैं। कोई कहेंगे बाबा हम भूल गए, क्षमा करना। अब इसमें क्षमा की तो बात ही नहीं। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पाते हैं, उन्नति अपनी ही करनी है। इतना जोर से नशा होना चाहिए, बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक समय में तीनों संबंध है या अलग अलग समय में तीन संबंध है? एक ही समय में तीनों है। पहले बाप होता है या पहले सदगुरु होता है या टीचर होता है? पहले बाप होता है फिर टीचर और अंत में सदगुरु। वो बाप अभी हमको पढ़ाते हैं तो कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, परंतु अटेंशन पूरा देते नहीं है। जैसे कि कुछ समझते ही नहीं। बच्चे तो समझ करके आते हैं कि हम किसके पास जाते हैं, बहुत काफी नशा चाहिए। बहुत ही उत्साह और उमंग में रहना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि बाप की पहचान के मुख्य पॉइंट पॉइंट क्या है। जो पॉइंट स्थिति में टिकते हैं उनको तो झट पता लग जाता है, जान जाते हैं कि ये बाप का ही पार्ट हो सकता है। इतनी सेवा करने वाला बाप के सिवाय और कोई भी धर्म पिता या महात्मा या कोई भी नहीं हो सकता। एक ही है और तीन रूपों में सेवा करते हैं। कितना ऊंचा ले जाते हैं। तो बच्चों को कितना पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, अपना ही जीवाला निकाल देंगे। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़े तो कितना ऊंचे पद पावे। बाप ने समझाया है ये आंखें बड़ा धोखा देने वाली है। कोई गुस्से में आते हैं तो गुस्से में आकर के आंखें निकाल देते। वो तो सूरदास की कहानी बनाई हुई है। वास्तव में इस समय की बात, आंखें बहुत धोखेबाज है। इन आंखों को कंट्रोल करने में बड़ी मेहनत चाहिए। इनको बस करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। फिर डरपोक भी नहीं होना चाहिए। देखना है आंखें धोखा तो नहीं देती, मेहनत है। कहना तो सहज है, अगला छोटा सा रात्रि क्लास है 17/11/67। रास्ता किसी को भी बताना बहुत सहज है, सिर्फ कोई कोई को लज्जा आती है। परंतु समझाना तो बहुत सहज है कि पतित पावन एक बाबा ही है। परंतु ये बात समझाने में लज्जा क्यों आती है? एक के सिवाय और दुनिया में 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ नहीं जो गिरोहों को ऊंचा उठा सके, पतितों को पावन बना सके। सब खुद भी नीचे गिरते आए हैं और दूसरों को भी नीचे गिराते आए। खुद भी संघ के रंग में रंगते गए औरों को भी संघ के रंग में नीचे ले जाते हैं। ये बात बताने में लज्जा क्यों आती है? ये एक ही बात है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय दुनिया ही पतित है और बड़ी तमो प्रधान बनी है। किसी को भी समझाओ तो कहो कि ये तमो प्रधान दुनिया है। आत्मा भी तमो प्रधान है और शरीर भी तमो प्रधान है। सतयुग में आत्मा भी सतो प्रधान होगी और शरीर भी सतो प्रधान होगी। ये तो कॉमन बात है। परंतु कोई की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं। कोई अच्छा अच्छा भी कहते हैं, जयपुर में कितनी प्रजा बनी हुई, प्रजा बहुत बनती है, कौन सी युग की। जयपुर की बात बताई, कौन सी युग की बात बताई होगी। प्रजा वहां बहुत बनती है, लेना नहीं देंगे कि हमको पता नहीं पड़ा। माना जयपुर में संदेश सबको मिल जाता है कि नई दुनिया आने वाली है, तो बाप कहते हैं सब किस्म के पर्चे निकालते रहो, बेहद के बाप से आकर नई दुनिया का वर्षा लो। आकर के तो नई दुनिया का वर्षा तब ले जब बाप प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहा हो, तब तो बाप के पास आएंगे। तो साहब आवेगी पर्चे निकालते रहना चाहिए, विश्व की भाषा ही मिलती है। ये भी तुम बच्चों को निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए, ऊंचे ऊंचे पद पाने वाले भी होते हैं और नीचे ते नीचे तबका पाने वाले भी होते हैं। और नई दुनिया की राजधानी होगी तो धर्म तो स्थापन हो गए, धर्म की स्थापना में बच्चों को दृष्टिगत नहीं होना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर ही रहने वाले हैं उन्होंने 50-60 हजार प्रजा जरूर बना ली होगी, विवेक भी ऐसा कहता है ना। बाप आया हुआ है, वो बाप ही पतित पावन है, वो कहते हैं कि मुझे याद करो। कहते हैं तो जरूर मुख होगा ना, फिर भी बहुत थोड़े बच्चे हैं कि जो चार टाज रखते अपने पुरुषार्थ पर इतना ध्यान रखते हैं। नंबर वन, कितनी गरीब माताएं भी आती हैं, ड्रामा अनुसार स्थापना होती रहती है, पुरुषार्थ किए बिना कोई रह नहीं सकेंगे। ड्रामा हरेक से पुरुषार्थ जरूर करेगा, तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। ड्रामा ही पुरुषार्थ करा देगा, फिर चिंता आएगी। ड्रामा जड़ है या ड्रामा चैतन्य है, और आत्मा आत्मा चैतन्य, तो चैतन्य आत्मा ड्रामा बनाने वाली होनी चाहिए या ड्रामा आत्मा भावनाओं को चेंज करने वाला होना चाहिए। आत्माएं जो जितनी चैतन्य होती है अर्थात आत्म की स्थिति में एक्सपर्ट बनती है वही ड्रामा को चेंज करने वाली बनती है। उनके लिए बोला है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। आत्म की स्थिति वालों की चढ़ती कला होती है और वो ईश्वरीय सेवा में लग जाते, उनके बहाने से और भी आत्माओं का कल्याण हो जाता है, ड्रामा ही बदल जाता है। बच्चे सर्विस में लगे रहते, एक समझ सकते हैं कि हमने कितनों को रास्ता बताया। तो सहज में ही ये सब समझने की बातें हैं, जो निश्चय बुद्धि है उनको ही समझ में आता है। उनके लिए कहा जाता है कि इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां कौन सी युग की बात है? सचिव में तो गोप गोपियां नहीं होंगी। बात तो गुप्त रहने की कोई बात ही नहीं है। कहां की बात है? यहां संगम युग की बात है, गुप्त रह करके सेवा की, गुप्त रह करके पुरुषार्थ किया, गुप्त रह करके याद किया, गुप्त रह करके दान किया और गुप्त ही गुप्त में ऊंच पद पा लिया। यहां ही तुम्हारा नाम रमणीक नाम रखा हुआ है। अभी तुम समझते हो कि हम वेद के बाप के बच्चे हैं। वो हमारा वेद का बाप है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये सब हद के बाप है। कोई 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र के बाप नहीं है। वो धर्म पिताएं भी उस बाप को याद करते तो वो समय हद के और ये है बेहद का बाप। वो बेहद का बाप ही ईश्वर का रचयिता है। जो हद के बाप है वो स्वर्ग नहीं रच सकते। कोई भी हद के बाप होते हैं अपने हद के घर परिवार में ही बंधन में रहते हैं, बुद्धि बंधी हुई रहती है, स्वार्थ रहता है। इस बाप को तो अपना रखे ही नहीं तो स्वार्थ कहां से आवेगा? स्वयं स्थिति में ही रहने वाला है तो जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है वो ईश्वर की रचना कर सकता है। हम बच्चों को जरूर वही वर्षा प्राप्त हो जाएगी। हम बच्चों को कहा जाता है तुम बच्चे जानते हो कि हम भाई बहनों को ब्रह्मा द्वारा वर्षा जरूर मिलना है। वर्षा मिलना है, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, हमारा जनवरी 69 में शरीर छोड़ दिया तो वर्षा मिलना है, ये बात कैसे साबित होगी? शरीर ही नहीं रहा तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो बताया बाप से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सार मनुष्य मात्र को वर्षा मिलता है। जगदम्बा कहो ब्रह्मा कहो बात तो एक ही हो जाती है। वो ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाला है, इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है। इस लिस्ट में पुरुषों की लिस्ट में है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन होते, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की पूजा तब होती है जब कोई ब्रह्मा अपना पुरुष तन त्याग कर कोई माता के तन में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा द्वारा तुमको जरूर वर्षा मिलना है, कल्प कल्प मिलता है और मिलता ही रहेगा, ये जरूर शब्द क्यों लगा दिया है? कोई कोई को संशय आता होगा कि बेसिक नॉलेज में तो ब्रह्मा ने ही शरीर छोड़ दिया और एडवांस नॉलेज में जिसको जगदम्बा कहा जाता है उसका कोई अता पता ही नहीं, तो संशय आता होगा। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा जरूर मिलना है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वो तो घर बैठे हुए भी समझते हैं कि हम बाप के बने, बाप नहीं कहा है कि शरीर का निर्वाह भी करना है तो कमल के फूल समान बनना भी है। यहाँ पर बच्चे आते हैं समझते हैं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, पत्र भी लिखते हैं तो शिव बाबा क्या है ब्रह्मा, जानवरों की भी हकार की जाती है ना। परंतु ये यात्रा तो बहुत मीठी है, घर बैठे ही यात्रा कर सकते हैं। अभी तक वो यात्रा है पूरी की, अभी ये यात्रा करते हो, यात्रा से आपको अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा ओम।